मैंने ये अनुभव किया कि जो महानुभाव अत्यधिक धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, वे मन वचन काय से, इसमें जो लिखा है वो अच्छा नहीं लिखा, अनुभव तो वैसे सभी का ऐसा ही है जो लिखा है उन्होंने, पर काय को वैसा उच्चारण करें, आप समझ गए होंगे कि उनका मन उतना साफ नहीं रहता। जो जितना ज़्यादा बार बार क्रियाएं दोहराते हैं बताने के लिए कि मैं धर्मात्मा हूँ, ऐसे लोगों के जीवन में झांक के देखते हैं तो जीवन तो सूना पड़ा हुआ और बाहर आडंबर बहुत है। इसी वजह से तो अपन को प्रॉपर मैसेज नहीं मिलता। धार्मिक व्यक्ति से जो मैसेज मिलना चाहिए उसके जीवन से, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत बाहरी है, बहुत सुपरफिशियल, बहुत सतही आचरण करता है वो। उसके जीवन में उसकी झलक, हमने तो दो प्रतिमा धारण करने वाले को गंदे गंदे अपशब्द बोलते सुना। बाहर रोड पर खड़े होते, दूसरे को जरा सी उसका पानी नाली में से उधर से उचट गया तो इतनी अपशब्द मुँह से, और दो प्रतिमा, कैसा लगता उस समय देख करके कि अरे क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज मिलेगा इनसे। इसलिए त्यागी वृत्ति को तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। उसकी सारा आचरण दूसरे को बहुत मैसेज देता है। पंडित जी थे सातवीं प्रतिमा वाले और अस्वस्थ हो गए, देव दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो उनसे कहा कि भोजन तो कर लो। भोजन नहीं करूँगा, दूध पानी दे दो। अरे आप महाराज भी तो कभी कभी जब दर्शन नहीं मिलते हैं तो आहार कर लेते। अरे वो तो महाराज हैं, मैं तो गृहस्थ हूँ। अरे तो अभी आप तो सात प्रतिमाधारी हैं। नहीं नहीं, अगर मैं सात प्रतिमाधारी होकर बिना मंदिर के भोजन कर लूँगा तो परंपरा बन जाएगी कि देखो इतने बड़े सात प्रतिमाधारी पंडित जी भी तो बिना दर्शन के भोजन कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। बताओ कितनी उनको इस बात की सावधानी थी। ऐसे ही त्यागी व्रती को भी जो धर्म करता है उसको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उसके जीवन से ऐसा मैसेज नहीं पहुंचना चाहिए जैसा उनने लिखा। सही लिखा हुआ है कि उतनी पवित्रता नहीं लगती, उनके व्यवहार से भी लोग अत्यंत अहंकारी प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से भी किसी ने ये प्रश्न किया था। उस समय आचार्य श्री सुनाते हैं, तो आचार्य महाराज ने तो पहले दोनों को समझाया, जो त्यागी व्रति बैठे थे उनसे भी कहा कि देखो अपने आचरण को अच्छा बनाना, और फिर जो जिसने कहा था उससे मालूम क्या जवाब दिया, उसको भी जवाब दिया। वो उनका जवाब कि देखो भले ही वो गुस्सा करते हैं त्यागी व्रति होकर के भी, लेकिन तुम्हारे गुस्से असयमी के गुस्से से तो ज़्यादा अच्छा गुस्सा है। कैसा, महाराज उदाहरण दो। बोले अगर एक असयमी है जो कि कोई त्याग व्याग नहीं करता, कोई धर्म नहीं करता, उसका घर में झगड़ा हो जाए तो नाराज होकर के बाहर चला जाएगा और होटल में खा लेगा, लेकिन त्यागी व्रति हो और नाराज हो जाए उस दिन उपवास कर लेगा लेकिन होटल में नहीं खाएगा, वो इतनी कषाय नहीं उसकी। ये थोड़ा फर्क, ऐसा फर्क भी बता दिया उन्होंने कि देखो कितने भी हो लेकिन उसको थोड़ा विवेक तो होता। ऐसा नहीं कि उसकी निंदा करो आप, लेकिन कमजोरी तो है कि अगर कोई त्यागी व्रति इस तरह का आचरण करे जिससे दूसरे को देखने में लगे कि अरे इनको अहंकार बहुत है या कि बहुत कषाय करते हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा कर लेते हैं इस तरह का। वो अब क्या है ना असल में कि एक तो इस पंचम काल में और त्याग करना बहुत कठिन, और फिर उसमें कोई अगर छेड़े तो और ज़्यादा। अब जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि दादी ने 16 कपड़ा पहने और अपन ने चिढ़ाया, छीलें क्या, तो देखो अब तुम छीओगे तो हम मार पड़ेगी तुमको, तो थोड़ी देर तो ऐसा कहेंगे, और अगर अपन ने छू लिया तो उनको गुस्सा आ जाती थी। देखो अब तुमने कब, पहले तो समझाती थी देखो अब तुमने छू लो, अब हम फिर से धोती सुखाएं, फिर से वो ठीक करें, फिर सू ला के फिर हम बनाते हैं, फिर कब खेहें 12 बजे, तुमने तो छी लो। उनकी समस्या भी देखो, उनको अगर क्रोध आ गया है तो उसका कारण क्या है कि अब उनको इतना सारा कुछ फिर से करना पड़ेगा। ये बात ठीक है कि उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका भी फर्ज है कि उनके धर्म ध्यान में सहयोगी बने। ये तो दोनों के बीच एक अच्छा अगर अंडरस्टैंडिंग हो और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो, तब तो ये बात बहुत अच्छी बनती। नहीं तो देखने में यही आता है कि त्यागी व्रती होने के बाद और अहंकारी हो जाते हैं।